पिछले अध्याय में आपने देखा कि आर्यन बीमार हो जाता है और सानवी उसकी देखभाल करती है। रिया शिव मेहता के साथ लिफ्ट में फंस जाती है और जेसिका आर्यन और सानवी को अलग करने की योजना बनाती है। इस अध्याय में इंदर आलिया के रेस्टोरेंट को खरीदने का फैसला करता है। जेसिका कृति को धमकाती है और आर्यन के घर एक पेन ड्राइव भेजती है। नाउ नेक्स्ट। सानवी अभी तक आर्यन राजवंश के घर में थी। वो कल के ही कपड़ों में थी, जीन्स, एक सिंपल सी टी शर्ट, बालों को बांधे हुए, बिना किसी मेकअप के। फिर भी उसमें एक सादगी थी जो सीधे आर्यन के दिल में उतर चुकी थी। आर्यन अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। उसने अच्छे से नाश्ता किया था, लेकिन सानवी को हमेशा की तरह चिंता थी। कुछ ऐसा बनाऊं कि ये पूरी तरह ठीक हो जाए, उसने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर में वो किचन में थी और ओवन में रखे चॉकलेट कपकेक्स की खुशबू पूरे घर में फैल गई। आर्यन, जो हर चीज़ नापतोल कर खाने वाला था, जो सिर्फ अपने हिसाब से चलता था, आज बिना किसी सवाल के सानवी की हर बात मान रहा था। सानवी ट्रे लेकर आई। प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर करें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने चुपचाप एक कपकेक उठाया, एक बाइट ली और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। ये तो बहुत टेस्टी है, बिल्कुल बचपन जैसा स्वाद, उसने कहा। आपको पसंद आया?
बहुत ज़्यादा, आर्यन मुस्कुराया। अब तुम भी खाओ, अकेले क्यों?
सानवी ने भी एक कपकेक लिया। दोनों बातें करते हुए मुस्कुराते हुए खाते रहे। बहुत समय बाद आर्यन को वो सुकून, वो खुशी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके दिल की बर्फ को धीरे धीरे पिघला दिया हो। शायद वो मान चुका था, सानवी अब सिर्फ उसके घर में नहीं, उसके दिल में भी रहने लगी थी। कृति बार बार सानवी को फ़ोन मिला रही थी। दीदी प्लीज़ फ़ोन उठाओ ना, वो बेचैनी में खुद से ही बड़बड़ा रही थी। मगर सानवी का फ़ोन किचन के काउंटर पर पड़ा था और वो उस वक्त आर्यन के साथ लिविंग रूम में बैठी कपकेक खा रही थी। कपकेक के बीच की पिघली हुई चॉकलेट सानवी के होंठों पर हल्के से लग गई। आर्यन ने गौर किया, मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिप्स पर चॉकलेट लगी है। सानवी झेंप गई। उसने जल्दी से टिश्यू उठाया और साफ करने की कोशिश की, मगर थोड़ा सा दाग रह गया। आर्यन उठकर उसके पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। वो झुका और अपने हाथ से सानवी के होंठों पर लगी चॉकलेट को साफ कर दिया। सानवी एकदम से ठिठक गई, शॉक्ड सी उसकी तरफ देखने लगी। आर्यन ने बहुत ही सहज अंदाज में कहा, अब साफ हो गया। सानवी ने धीरे से कहा, थैंक यू। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी निगाहें नीचे झुकी थीं। आर्यन वहीं था। उसकी उंगलियों पर अब भी चॉकलेट की हल्की मिठास थी और उसके चेहरे पर एक बेवजह की मुस्कान। सानवी ने नजरें चुराईं, दिल की धड़कनें अब भी थोड़ी तेज थीं। मेल्स के साथ वो लिफाफा अब टेबल पर पड़ा था, ठीक वहीं जहां आर्यन और सानवी आमने सामने बैठे थे। कमरे में हल्की सी चुप्पी थी, बस कपकेक की खुशबू और दिलों की धड़कनों की आवाज बाकी थी। टेबल पर रखा लिफाफा आर्यन की नजरों में आ गया। ये क्या है? उसने धीरे से कहा और पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। सानवी भी उसी दिशा में देखने लगी। शायद किसी ने अभी अभी डिलीवर किया है, उसने अंदाजा लगाया। आर्यन ने लिफाफा उठाया और उसे खोलने ही वाला था कि अचानक तेज खांसी आने लगी। वो झुक गया और लिफाफा उसके हाथ से छूटकर टेबल पर गिर पड़ा। आर्यन! सानवी घबरा गई, आप ठीक हैं? आर्यन ने हाथ उठाकर इशारा किया, कुछ नहीं, बस हल्की खांसी है। सानवी ने कहा, रुकिए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लाती हूँ। वो झट से खड़ी हो गई। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की, नहीं सानवी, अभी अभी चॉकलेट केक खाया है, मुझे फिलहाल चाय नहीं चाहिए। सानवी ने भौंहें चढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ कि आज आप पूरी तरह ठीक हो जाओ और ऑफिस जाना स्टार्ट करो। रोज रोज मैं यहाँ रुककर आपकी सेवा नहीं कर सकती। उसके लहजे में हल्की नाराजगी थी, पर आंखों में अपनापन। आर्यन उसे देखता रहा। ओह, तो मिस सानवी अब थक रही है मेरी देखभाल करते करते, उसने मुस्कुराकर कहा। सानवी ने सिर घुमाया, हाँ बिल्कुल। वो बिना पीछे देखे किचन की तरफ चली गई। आर्यन की मुस्कान थोड़ी देर तक वहीं ठहरी रही, फिर उसने धीरे से टेबल पर पड़े उस लिफाफे की ओर देखा जिसे वो खोल नहीं पाया था। उधर किचन में सानवी जब अंदर पहुंची तो उसका फोन बार बार बज रहा था। काउंटर पर पड़े फोन की स्क्रीन पर कृति कॉलिंग चमक रहा था। सानवी ने फोन उठाया नहीं। वो केतली में पानी चढ़ाते हुए बोली, इतनी बार फोन क्यों कर रही है ये? उसी वक्त कृति दूसरी तरफ परेशान थी। दीदी प्लीज फोन उठाओ ना, कुछ जरूरी बात करनी है, वो अपने आप से बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज में बेचैनी थी, मानो कोई बड़ी बात बताने की कोशिश में हो। और इधर सानवी अब भी इस बात से अनजान थी कि जो लिफाफा आर्यन के सामने टेबल पर पड़ा है वही शायद उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। किचन में पानी उबलने की आवाज गूंज रही थी। सानवी चाय बना रही थी लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। फोन फिर बजा, कृति कॉलिंग। वो अनदेखा कर देती है, दो बार, तीन बार, फिर पांचवी बार। कृति मानो हार ही नहीं मान रही थी। सानवी ने झुंझलाकर कहा, ये लड़की भी ना, और आखिरकार फोन उठा लिया। क्या हुआ कृति, इतनी बार फोन क्यों कर रही हो? दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। दीदी प्लीज फोन मत काटना, मेरी बात ध्यान से सुनो। सानवी चौंक गई। क्या हुआ? कृति लगभग रोते हुए बोली, आर्यन को एक लिफाफा मिला होगा ना, उसमें कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे साफ हो जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट की पिक्चर मैंने ली थी। प्लीज दीदी, उनसे वो लिफाफा मत खुलने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। सानवी के हाथ से चम्मच गिर गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या कह रही हो तुम? वो हकला गई, पर तभी उसके हाथ से गलती से कांच का ग्लास टकरा गया। छन, ग्लास जमीन पर टूटकर बिखर गया। सानवी झुककर टुकड़े समेटने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही हो। इसी बीच आर्यन, जो लिविंग रूम में लिफाफा खोलने ही वाला था, ग्लास टूटने की आवाज सुनते ही भागकर किचन में आ गया। सानवी, वो तेजी से बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सानवी घबराई सी फर्श पर झुकी थी, उसकी उंगलियों में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा छुप गया था। आर्यन ने बिना कुछ सोचे झुककर उसका हाथ पकड़ लिया। बस छोड़ो इसे, मैं कर लूंगा, वो उसके हाथ से वो टुकड़े अलग करने लगा। सानवी की आंखों में डर और दर्द एक साथ था, वो सिर्फ कांच से नहीं कृति की बातों से भी घायल थी। आर्यन ने उसका हाथ अपने में लेकर कहा, देखो खून निकल आया है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सानवी कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो उसे देख नहीं पा रही थी, क्योंकि डर अब सिर्फ चोट का नहीं था, डर था खो देने का। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अगर आर्यन ने वो लिफाफा खोल लिया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा।
सानवी का हाथ कांच से कट गया था, खून की एक पतली सी लकीर उसकी उंगलियों से बह निकली। वो घबराई हुई थी, कांपते हुए बोली, वो मुझसे टूट गया। और फिर उसके गले से शब्द नहीं निकले, बस आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन ने देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतनी छोटी सी बात पर रो रही है। अरे तो क्या हुआ, तुम बच्चों जैसी क्यों कर रही हो? उसने धीरे से कहा, और सानवी का हाथ पकड़कर उसे पानी के नीचे कर दिया। ठंडे पानी से खून धीरे धीरे रुकने लगा। आर्यन ने बड़ी नरमी से उसका हाथ थामा, बस अब ठीक है। वो अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बहुत ध्यान से सानवी की उंगली पर बैंडेज लगा दिया। सानवी अब भी रो रही थी, पर आर्यन को लगा कि ये रोना सिर्फ दर्द की वजह से है। उसे क्या पता था, ये दर्द किसी और डर से था, उस लिफाफे से जो कुछ ही कदम दूर टेबल पर पड़ा था। सानवी के मन में एक ही डर था, अगर आर्यन ने वो लिफाफा खोल लिया तो शायद सब खत्म हो जाएगा, वो सब जो अभी अभी शुरू हुआ था। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, देखो रो मत, अभी सब ठीक हो जाएगा।
इतनी सी चोट पर ऐसे रोते हैं क्या? वो उसे बच्चे की तरह समझाने लगा। सानवी ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस अंदर ही अंदर टूट रही थी। कृति अपनी कुर्सी पर बैठी थी, बेचैन और परेशान। उसके हाथों में मोबाइल था, वो हर कुछ मिनट में स्क्रीन देखती। बस दीदी ने रोक लिया तो सब ठीक हो जाएगा, वरना सब खत्म। उसकी आवाज कांप रही थी। उसी वक्त देव अंदर आया। कृति, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारा इंटरव्यू तो हो चुका है, कल से तुम्हें ज्वाइन करना है ना? कृति ने जल्दी से आंखें पोंछी। हाँ, बस जा ही रही हूं, वो बोली, पर उसके स्वर में घबराहट छिपी नहीं थी। देव ने उसे देखा। सब ठीक है ना? कृति ने सिर हिलाया। हाँ सब ठीक है, मगर उसके मन में वही डर गूंज रहा था। अगर आर्यन ने वो लिफाफा खोल लिया तो उसकी और दीदी दोनों की दुनिया बिखर जाएगी।